हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 34। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं धराति स्व पदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधरुणबिम्बफला धरोष्ठात् पुरेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जानि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दे ये स्तवे वेदे साङ्गपत् क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विधो सुरासुरगणा दीवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत कथाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं कुरुति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरां यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। ग्रन्थ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय। जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। तो हमने देखा किस प्रकार वैभव और ऐश्वर्य के साथ भगवान ने विभिन्न देशों में विचरण करते हुए वो अपनी नगरी द्वारिका में प्रवेश किया उन्होंने, और द्वारिका के समस्त रहवासियों ने, हर एक जीव जो द्वारिका में रहता है वो भगवान का किस प्रकार से अभिनंदन कर रहा था, कैसे स्वागत कर रहे थे सब, और भगवान सबसे प्रेम का आदान प्रदान करते हुए प्रथम अपने माता पिता के कक्ष में गए, माताओं के साथ प्रेम स्नेह का व्यवहार करने के उपरांत वो अपने महलों की ओर आए, और उसके उपरांत हमने देखा कि किस प्रकार उनकी पत्नियों ने अपना प्रेम अपना स्नेह भगवान के श्री चरणों पर निछावर किया। अब उसके बाद आज शिला सूत गोस्वामी भगवान की जो लीला, जो कुरुक्षेत्र लीला है, उसको सूत गोस्वामी बहुत ही संक्षिप्त में बता रहे हैं श्लोक नंबर 34 में। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, एवं नृपाणाम क्षित भार चंदना, क्षमा कीजिएगा, फिर से देखिए, एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्मना अक्षोहिणी भी परिवृत्त तेजसा विधाय वैरम श्वसनो यथा नलम मिथो विधेनो परतो निरायुध। एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्मना अक्षोहिणी भी परिवृत्त तेजसा मिथो विधेनो विधाय वैरम श्वसनो यथानलम मिथो विधेनो परतो निरायुध। एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्मना अक्षोहिणी भी परिवृत्त तेजसा विधाय वैरम श्वसनो यथानलम मिथो विधेनो परतो निरायुध। शब्दार्थ देखिए, एवं निराणाम, निराणाम कहते हैं जो राजा हैं, जो प्रशासक हैं, तो उन्होंने इस प्रकार क्षिति भार जन्मनाम, यानी वो इस तरह से संसार में जो उत्पन्न हो गए थे, ऐसे ऐसे राजा जो पृथ्वी के लिए बोझ बन गए थे। वास्तव में भक्तों, ये क्षिति भार जन्मना मतलब जो राजा पृथ्वी के लिए भार रूप में जन्म, पृथ्वी के ऊपर बहुत बहुत समुद्र हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं और वृक्ष हैं, बहुत सारी चीजें पृथ्वी के ऊपर, परंतु पृथ्वी को उनका भार नहीं लगता, परंतु जो अन्यायी राजा हैं, जो अपराधी जीव हैं, जो पाप कर्म करते हैं, पृथ्वी उनका बोझ सहन नहीं कर सकती, फिर वो भगवान के पास अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए जाती है और कहती है, हे करुणा निधान, अब इन अपराधियों का बोझ मुझसे नहीं सहा जाता। तो भगवान इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं, एवं नृपाणाम क्षिति भार जन्मना, मतलब जो राजा पृथ्वी के ऊपर भार स्वरूप में जन्म लिया था, जिन्होंने अक्षोहिणी भी परिवृत्त तेजसा, अक्षोहिणी भी का मतलब होता है घोड़ों हाथियों रथों तथा पैदल सेना शक्ति के द्वारा शक्ति संपन्न, जिनके पास बहुत सारी अक्षोहिणी सेना बहुत सारी हो, और परिवृत्त ऐसे परिवेश से गर्वित, कि भाई हमारे पास बहुत सारी सेना है तेजसा, उनका हमारे पास बहुत सारा पराक्रम है, जो अपने अहंकार के कारण बहुत ज्यादा मंद बुद्धि हो जाते हैं और अपने पराक्रम से निर्दोष प्रजा को बहुत ज्यादा दुख देते हैं। उनके लिए भगवान ने क्या किया, विधाय वैरम श्वसनो यथानलम। ऐसे राजाओं का नाश भगवान श्री कृष्ण ने कैसे किया, विधाय वैरम यानी वैर उत्पन्न करके, आपस में वैर शत्रुता उत्पन्न करके। श्वसन कहते हैं बांसों के पौधों तथा वायु से घर्षण से, यानी कि जब बांस होते हैं ना, बहुत सारे बांसों के जो लगे हुए होते हैं ना जहां पर, तो वहां पर किसी को कुछ इन बांसों को खत्म करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वायु, तेज वायु आती है और बांस जो है वो आपस में घर्षण होता है उनमें, और उससे क्या होता है, वो सारे बांसों में अग्नि लग जाती है और सब एक के बाद एक, एक के बाद एक वो भस्म होने लगते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान ने क्या किया, विधाय वैरम, उनमें आपस में ही शत्रुता उत्पन्न कर दी। श्वसन बांसों के पौधों तथा वायु से संघर्ष से, यथा अनला जिस प्रकार अग्नि मिथ एक दूसरे के साथ वधेन यानी मारने से, मतलब मिथो विधेनो परतो यानी आपस में युद्ध कराकर, जिस प्रकार वायु बांसों को इधर उधर झंझोड़ता है और उनमें आग लग जाती है, वैसे ही भगवान ने इनको आपस में ही लड़ाया। निरायुध मतलब युद्ध में किसी का पक्ष भी नहीं किया, ना ही शस्त्र मतलब शस्त्र नहीं उठाया। ऐसा नहीं कि अगर भगवान शस्त्र उठाते फिर तो इन सबको लड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, एक ही शस्त्र भगवान का काफी था, एक ही सुदर्शन चक्र घुमाते और सबका सर्वनाश हो जाए। लेकिन भगवान लीला करते हैं और आपस में जिस प्रकार से बांसों को वायु जो है आपस में संघर्ष झुंझोड़ता है और घर्षण पैदा करने से अग्नि लग जाती है और वो सारे भांस जो है वो जलकर खाक हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान ने उन समस्त राजाओं को आपस में लड़वाया और उसी से उनका नाश हो गया। भगवान निरायुध, भगवान को तो शस्त्र उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, किसी के पक्ष में लड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। अनुवाद देखिए, पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को शांति प्राप्त हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। भगवान युद्ध में किसी दल में शरीक नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। यहाँ पर सुत गोस्वामी कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में अनुवाद में लिखा है कि पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को शांति उत्पन्न प्राप्त हुई, क्योंकि अभी देखो भगवान ये कुरुक्षेत्र का युद्ध करवाने के बाद यहाँ पर आए हैं, तो भगवान बहुत शांत हैं क्योंकि बहुत सारे जो अपराधी राजा हैं, जो बहुत ज्यादा गर्वित थे, बहुत ज्यादा प्रजा को कष्ट देते थे, अपने सैन्य बल के सैन्य शक्ति के कारण बहुत अपराध करते थे, उन समस्त राजाओं को आज भगवान वो सारे राजा आपस में ही लड़कर नाश हो गया और पृथ्वी का कल्याण हुआ, पृथ्वी का भोज समाप्त हुआ, तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न है। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि जीव उन वस्तुओं का वास्तविक भोक्ता नहीं है जो भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। अब इस संसार में जो कुछ भी है वो भगवान की सृष्टि है। वास्तव में जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वास्तव में भोक्ता या पुरुष केवल भगवान है और हम सब भोग्य हैं, जीव कभी भी भोक्ता नहीं है। तो भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट की गई प्रत्येक वस्तु के असली स्वामी तथा भोक्ता है। दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेशानुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। वास्तव में जीव का सबसे बड़ा अपराध ये है कि वो अपने आप को सेवक न मानकर अपने आप को भोक्ता मानने लगता है। जीव जिस समय जीव के अंदर सबसे बड़ा जो अपराध है एक जीव का वो यही है कि वो अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ। वो मालिक बनना चाहता है, वो प्रभुत्व जताना चाहता है, वो आनंद प्राप्त करना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है, भोक्ता हम। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जब माया एक जीव पर आक्रमण करती है और जीव प्रकृति के गुरों के आदेशानुसार भोक्ता बन जाता है। ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेक अनेक कार्यों के द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस तरह पृथ्वी का भार बन जाता है और पृथ्वी में भले मानस का नाम निशान नहीं रह जाता। अब जीव क्या करता है, वो अपनी शक्ति बढ़ाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब वो मोहित हो गया है, चाहता है कि मैं भोक्ता बनूं, और इस प्रकार से शक्ति बढ़ाता है और इस तरह वो पृथ्वी का भार बन जाता है, अपराध स्टार्ट कर देता है। क्योंकि एक बार जब जीव के हृदय में ये कामासना पैदा हो जाती है कि मुझे अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है, तो वो शक्तिमान बनने के बाद वो कोई भी गलत तरीका अपनाकर कोई भी अपराध कोई भी पाप करने को तैयार हो जाता है केवल अपनी काम वासना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और इस प्रकार वो पृथ्वी का बोझ बन जाता है। और फिर इस तरह भले मानस का नाम और निशान नहीं रह जाता। ये अवस्था धर्मस्य ग्लानि कहते हैं, इसको जैसे भगवान कहते हैं ग्लानि भवति भारत, ये धर्म की ग्लानि है। इसे भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की ग्लानि होती है अर्थात मानव शक्ति का दुरुपयोग होता है तब भगवान इस संसार में आते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यह अवस्था धर्म ग्लानि अर्थात मानव शक्ति का दुरुपयोग कहलाती। कौन सी अवस्था, जब जीव भगवान का दास न बनकर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखकर भोक्ता बनकर अपराध करना स्टार्ट कर लेता है तो उसको धर्म की ग्लानि कहा जाता है। जब इस प्रकार धर्म की ग्लानि प्रकट होने लगती है तो धर्मात्मा लोग धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशासकों द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों में व्यग्र होते हैं और तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने तथा संसार के इन प्रशासकों का भार को कम करने के लिए भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 4.78 में बताया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो क्योंकि जब प्रशासक जब राजा अधर्मी बन जाते हैं तो धर्मात्मा लोगों के लिए जीना कठिन हो जाता है, तो और जो धर्मात्मा लोग होते हैं वो इन प्रशासकों के द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के कारण व्यग्र होते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब उन धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने और संसार के इन अपराधी प्रशासकों का भार कम करने के लिए भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से इस संसार में अवतरित होते हैं। वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते अपितु अपनी शक्ति से वे उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं, ठीक उसी तरह जिस प्रकार वायु बांसों की रगड़ से जंगल में अग्नि उत्पन्न कर देता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे अपराधियों पर भगवान दया नहीं दिखाते, वैसे तो भगवान करुणा के सागर हैं, लेकिन जब कोई भी उनके भक्तों को किसी प्रकार से हानि पहुंचाता है भक्तों को कष्ट देता है तो फिर भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, में दुष्टों का मैं विनाश कर देता हूँ, उन पर कोई कृपा नहीं करता क्योंकि वो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जैसे अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया, भगवान किसी को मारते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, विधाय वैरम श्वसनो यथाननम, जिस प्रकार से बांसों को आपस में वायु रगड़कर और सारे बांसों को रगड़ती है तो क्या होता है, जंगल में अग्नि उत्पन्न हो जाती है, या अग्नि जंगल में स्वतः वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है। उसी प्रकार राजनीतिज्ञों के विभिन्न दलों में शत्रुता का प्रादुर्भाव भगवान की अदृश्य योजना होती है। भगवान तो निरायुध रहते हैं, कोई शस्त्र नहीं उठाते, लेकिन भगवान की ये योजना होती है जिसके कारण इन समस्त अपराधी राजाओं की का नाश होता है। ये अवांछित प्रशासक झूठी शक्ति तथा सैन्य बल से गर्वित होकर आदर्शवादी संघर्षों के लिए परस्पर युद्ध करने लगते हैं और अपनी सारी शक्ति का क्षय कर देते हैं। इनको खाली बल, अपने बल पर, अपने सैन्य बल पर, अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा गर्व होता है, घमंड होता है, और इस प्रकार वो क्या करते हैं, वो आपस में परस्पर युद्ध करके अपनी शक्ति का क्षय कर देते हैं। विश्व का इतिहास भगवान की इस इच्छा शक्ति को बताता है और यह तब तक चलती रहेगी जब तक सारे जीव भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं हो जाते। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जब तक सारे जीव भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं हो जाते, जब तक समस्त जीवों के हृदय से भोक्ता बनने का, जब तक सारे जीवों के हृदय से प्रभुत्व जताने की इच्छा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक यह युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा। और श्री रूपा जी अत्यंत सुंदर बात एक बताते हैं कि पूरा विश्व कृष्ण भावना की कमी के कारण दुख भोग रहा है, इसलिए हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाएं, क्योंकि जब तक जीव कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, जब तक जीव कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आ जाता, तब तक वो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य करेगा और इस प्रकार जन्म मृत्यु की अग्नि यूं ही भड़कती रहेगी। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, और जब तक सारे जीव भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं हो जाते, तब तक यह युद्ध चलता रहेगा। और श्री प्रभुपाद जी आगे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को कोट करते हुए बताते हैं, श्रीमद् भगवद गीता 7.14 में यह तथ्य अत्यंत ही विशद रूप से वर्णित हुआ है। 7.14 में भगवान कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इसमें कहा गया है, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, यहाँ श्री रूपा जी कहते माया मेरी शक्ति है, मम माया, इसलिए आश्रित जीवों के लिए संभव नहीं है कि वे भौतिक गुणों की शक्ति का अतिक्रमण कर सकें। दुरत्यया मतलब उसको पार करना बहुत कठिन है। आप इस प्रकृति में रहते हो जो आश्रित जीव हो, इसलिए आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप इस माया को पार कर सको। तो फिर भगवान की माया को पार करने के लिए क्या करना है, भगवान कहते हैं, किंतु जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, वे इस माया रूपी विशाल सागर को पार कर सकते हैं, माया में तब तरंति थे। इसका अर्थ यह हुआ कि सत्काम कर्म द्वारा या चिंतन या आशीर्वाद द्वारा शांति तथा संपन्नता नहीं लाई जा सकती। कुछ लोग सोचते हैं अच्छे कार्य, अक्सर ऐसा होता है ना, लोग अच्छे काम करने का दर्श देते हैं, अच्छे काम करो, किसी के साथ बुरा ना करो, किसी ये मत करो वो मत करो, लेकिन ये सब गुण जो है एक मनुष्य के हैं। मनुष्य जो है वो चाहे कितना ही महान क्यों ना हो जाए, जब तक वो भक्त नहीं बनता है, तब तक माया को पार करना
पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि आशीर्वाद द्वारा शांति तथा संपन्नता नहीं लाई जा सकती, सकाम कर्म द्वारा या चिंतन द्वारा ये सब नहीं हो सकता है। और शांति और संपन्नता लाने का एकमात्र उपाय क्या है? मामेव हि प्रपद्यन्ते। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है, एकमात्र उपाय परमेश्वर की शरण ग्रहण करना है और माया के मोह से मुक्त हो जाना है। ये बात अपने दिल से निकाल देनी है कि मैं स्वयं इंद्रिय तृप्ति करके या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके आनंद प्राप्त करूंगा, भोक्ता बनूंगा। ये अपने हृदय से ये बात निकाल कर, अपने आप को दास मानकर, भगवान की शरणागति को स्वीकार करके, कृष्ण की इच्छा को स्वीकार करके यदि कोई जीव कार्य करेगा तभी उसके जीवन में शांति और प्रसन्नता उत्पन्न हो सकती है। श्रील प्रभुपाद जी आगे समझाते कि दुर्भाग्यवश जो लोग विध्वंसक कार्यों में लगे हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करने में अक्षम हैं। जो अपराधी कार्य करते हैं भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, वे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं, वे मनुष्य की निम्नतम योनि में रहते हैं, उनका सारा ज्ञान छीन लिया जाता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 7.15 में, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। जो मूर्ख हैं, जो दुष्कृतिनो हैं, वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। तो भगवान कहते हैं कि वो नर अधम हैं, मनुष्यों में निम्नतम योनि में रहते हैं और माया प्रहृत ज्ञान, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उनका सारा ज्ञान छीन लिया गया है। और यद्यपि वे ऊपर से शिक्षित लगते हैं, वे आसुरी वृत्ति के होते हैं, आसुरम भावम आश्रिता, नित्य ही भगवान की परम शक्ति को ललकारते रहते हैं। वो भगवान की शरण स्वीकार नहीं करते हैं, सबसे बड़े मूर्ख हैं, जो अत्यधिक भौतिकतावादी हैं और भौतिक शक्ति के लिए लालायित रहते हैं, वे निस्संदेह पहले दर्जे के मूर्ख हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि उन्हें जीवन शक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता है कि वास्तव में हम कौन हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान क्या है और हम किस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर, इन दुखों भरे संसार से छूटकर भगवान को प्राप्त कर सकते, कुछ ज्ञान नहीं होता। माया प्रवृत्त ज्ञान, क्योंकि माया ने उनके ज्ञान को खत्म कर दिया। वास्तव में जीव के अंदर ज्ञान है, जीव सच्चित आनंद है, परंतु क्योंकि वो माया के संसर्ग में आ जाता है इसलिए माया उनका समस्त ज्ञान हरण कर लेती है। वे परम आध्यात्मिक ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण भौतिक विज्ञान में मस्त रहते हैं, जिसका अंत शरीर के साथ हो जाता है। वो भगवान के परम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर नहीं जाते हैं, बल्कि भौतिक ज्ञान, ये प्राप्त कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, उनको खाली यही याद रहता है। और इस भौतिक ज्ञान के द्वारा वो जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसका अंत तो उस शरीर के साथ ही हो जाता है। वे परम अधम मनुष्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन तो भगवान के साथ विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करने के निमित्त मिला है। श्रील प्रभुपाद जी हमारे जीवन के वास्तविक कारण के विषय में बता रहे हैं कि जीव कितना मोह में आ जाता है और इस संसार में ही सुखी रहने के लिए अपने पूरे जीवन को समाप्त कर देता है, परंतु वास्तव में ये मनुष्य जीवन इस प्रकार आहार निद्रा भय मैथुन में जानवरों की तरह समाप्त करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि वास्तविक जीवन प्राप्त करने की यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं कि यह मनुष्य जीवन तो भगवान के साथ विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करने के निमित्त मिला, किंतु वे भौतिक कार्यकलापों में लगे रहने के कारण इस अवसर को खो देते हैं। पूरा जीवन केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए जीते हैं, ये खा लूं, वो कमा लूं, और लेकिन अपने इस स्वर्ण अवसर को, जिस जीवन के द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसको वो समाप्त कर देते हैं, इस अवसर को खो देते हैं। उनकी, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, उनकी बुद्धि मारी जाती है क्योंकि दीर्घकालीन चिंतन के बाद भी वे इस भगवान को नहीं जान पाते जो प्रत्येक वस्तु का सार सर्वस्व है। भगवान के विषय में कुछ नहीं जानते। वो बहुत चिंतन करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानने का प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, परंतु वास्तव में प्रत्येक वस्तु के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जो प्रत्येक वस्तु के सार हैं, जो सर्वस्व हैं, उस भगवान के विषय में वो कुछ भी नहीं जानते। वे सारे के सारे आसुरी सिद्धांत वाले होते हैं और वे उसी तरह अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं जिस तरह की रावण, हिरण्याकश्यप, कंस तथा अन्य भौतिकतावादी शूरवीरों ने भोगा था। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे कि ऐसा नहीं है कि रावण के पास कोई ज्ञान नहीं था, चार वेदों का ज्ञानी था। हिरण्यकश्यप ने 36,000 वर्ष तक तपस्या की थी। कंस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, परंतु उन्होंने अपने समस्त ज्ञान, अपनी समस्त शक्ति, अपनी समस्त बुद्धि का उपयोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए किया। वास्तव में जो कोई जीव यदि अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, भगवान के दासत्व को स्वीकार न करके भोक्ता बनना चाहता है, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं उनका अंत उसी प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार इन समस्त असुरों का हुआ, जिस प्रकार उन्होंने अपने किए कर्मों का फल भोगा। वास्तव में हर वो कार्य अपराध है जो भगवान की खुशी के लिए ना करके अपनी इंद्र तृप्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि वास्तव में हम इंद्र तृप्ति के लिए नहीं अपितु भगवान को प्रसन्न करने के लिए हैं। हमारा कार्य केवल भगवान को प्रसन्न करना है। तो वो जीव जो केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है वो अपराध करता है और उसे अपने इन समस्त कर्मों का फल भोगना पड़ता है जिस प्रकार से इन समस्त शूरवीरों ने भोगा। उसी बात को यहाँ पर सुत गोस्वामी ने बताया है, एवं नृपाणम क्षिति भार जन्मना, कि संसार में वो जीव वास्तव में भार है जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, जो भगवान से प्रेम नहीं करता है, जो भगवान के दासत्व को स्वीकार नहीं करता है। तो ऐसे जीवों को का विनाश करने के लिए भगवान वो वायु बनकर आते हैं और उनको आपस में ही शत्रुता करा के, जिस प्रकार बांसों वायु के द्वारा बांसों के अंदर अग्नि लग जाती है, उसी प्रकार भगवान भी ऐसी योजना करते हैं कि वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। आगे का बहुत ही सुंदर टॉपिक है कि जैसे भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, अनेकों लीलाएं की हैं, परंतु उनमें से एक लीला बहुत ही अद्भुत है और आज तक लोग विचार करते हैं कि भगवान ने इतनी सारी स्त्रियों के साथ विवाह क्यों किया। कोई एक के साथ शादी करता है, कोई दो के साथ, चलो कोई 10 के साथ कर ले, भगवान ने तो 1,000 स्त्रियों के साथ कर ले, परंतु ये तो 16,108, इसको सुनकर दिमाग चकराने लगता है। तो भगवान की इन अद्भुत लीलाओं के विषय में हम आगे पढ़ेंगे, कृपया साथ रहिएगा। और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। श्री कृष्ण।